नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज कार्यक्रम झूलो आसमान में आपसे रूबरू होंगे अमित राठी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके साथ बातचीत कर रहे हैं विकास मिटिसन, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नज़ारा टेक्नोलॉजीज, प्रेसिडेंट IBG एंड द ऑनररी काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली।
हमारे साथ आज हैं अमित राठी जी, ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल सर्विस में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स हैं इंडिया में। यंग हैं लेकिन फिर भी मैनेज कर रहे हैं। मैं आपका जाना माना, जिसको बोलते हैं विकास मित्तसेन। वेलकम राठी जी टू ऑल इंडिया रेडियो 100.1 गोल्ड FM।
शुक्रिया।
हमको ये बताइए, आपकी अर्ली लाइफ क्या थी? आप फाइनेंस फैमिली से ही हैं या आपने शुरू करा है? क्या सिचुएशन था आपका और उसके पहले स्कूल?
सब बताता हूँ। तो एक तो मैं इतना यंग भी नहीं हूँ,
दिखते तो हैं,
45 साल की उम्र होने वाली है एक महीने में। हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग फैमिली ओरिजिनली जोधपुर से है, राजस्थान से। मेरे डैड जो है, पिताजी जो है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड मेडल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सर्विस में थे। उन्होंने करीब 21 साल आदित्य बिरला ग्रुप में बिताए, जहाँ वेरियस बिजनेस, काफ़ी बिजनेस, अलग अलग बिजनेस उन्होंने चलाए, सेटअप किए। उसमें दो बड़े बिजनेस थे, सीमेंट का एक बड़ा बिजनेस था जो आज अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया है, और फाइनेंशियल सर्विसेज। और क्योंकि पिताजी जॉब में थे तो हमारी भी, उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह थे, तो बचपन जब पैदा हुआ तब मैं गुजरात में था, एक छोटा शहर वेरावल करके, फिर कलकत्ता में रहा कोई फैक्ट्री में, और उसके बाद 1982 से बॉम्बे में हम शिफ्ट हुए। तो स्कूलिंग सारी बॉम्बे, मोस्टली स्कूलिंग बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में एक स्कूल है हिंदी विद्या भवन, मरीन ड्राइव पे, वहाँ स्कूलिंग हुई। कॉलेज सिडनम कॉलेज, वो भी मरीन ड्राइव में, वहीं कॉलेज हुआ। कॉलेज के साथ साथ सीए एक अपॉर्चुनिटी मिली। हम एक फर्स्ट बैच में थे जहाँ पे बीकॉम के साथ आप सीए कर सकते थे। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और फैमिली में काफ़ी सीएस थे, पिताजी भी सीए थे, चाचा जी भी सीए थे,
सबको बनना ही है,
तो सबको सीए बनना एक बहुत बड़ा नेचुरल था कि पढ़ाई में करना है। तो और उस जमाने में कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई सीरियसली होती नहीं थी,
अभी भी कहाँ होती,
यू नो, लोग कैंटीन में ज़्यादा बैठे रहते थे। तो एक तरह से सीए हमारी अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो गई। तो सीए करते करते एक अपॉर्चुनिटी डैड को मिली कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रोफेशनल मेंबर्स को इंडक्ट कर रहा था 1993 में, क्योंकि BSE एक बहुत बड़ा पुराना एक्सचेंज है, 125 साल पुराना एक्सचेंज है। जितनी ब्रोकिंग फर्म्स इंडिया में थी वो ज़्यादातर मतलब पुश्तियों से चली आ रही थी, जनरेशनल ओल्ड फर्म्स थी। तो BSE भी चाहता था कि भाई थोड़े प्रोफेशनल्स को हम लाएं इस मार्केट में और इस प्रोफेशन में। जो मेरे फादर का एक्सपीरियंस था वो एक हेल्पफुल था, तो हमने एक अपॉर्चुनिटी लगी और उन्होंने मुझसे पूछा, अमित ये फील्ड में इंटरेस्ट रहेगा? तो मैंने कहा जरूर, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड।
उस टाइम पर क्या एज के थे?
मेरी एज उस टाइम 18 थी।
फिर भी पूछे आपको?
हाँ, फिर भी पूछे, क्योंकि आई थिंक
ग्रोन अप लाइक दैट।
हाँ, ग्रोन अप। और एक्चुअली क्या, बचपन से ट्रेनिंग, एक मारवाड़ी फैमिली में ट्रेनिंग बहुत अलग होती है। तो एक एडवांटेज ये था कि आप जब से 13-14 साल के थे तो स्कूल के बाद ऑफिस, पापा के ऑफिस जाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, अकाउंट्स करते थे। 10th-11th समर हॉलीडे में जाके फैक्ट्रियों में एक एक महीना रहते थे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बजटिंग कैसे होती है, बिजनेस कैसे चलता है, वो एक्सपोजर। तो एक्सपोजर एक यंग एज से आपको, और मेरे चाचा जी की भी एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म थी, तो कॉलेज में 11th-12th के बाद वहाँ जाते थे, तो वहाँ मार्केट का ऑलरेडी चस्का लग गया। और जब 91-92 में अगर आपको ध्यान हो तो उस टाइम, यू नो, हर्षद मेहता के पहले एक बहुत बड़ा बूम आया था, खूब अच्छे पैसे बन भी रहे थे। तो साइड में ट्रेडिंग भी चालू कर दी जब मैं 16 साल का था, खूब अच्छे पैसे पैसे भी बनाए, और वो 2 दिन में पैसे गवा भी दिए जब मार्केट क्रैश हुआ। तो उसकी जो लर्निंग हुई वो बहुत अच्छी हुई। बट उसी टाइम 92-93 में पिताजी ने पूछा कि भाई ये बिजनेस, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो बहुत सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव थे, तो एट द एज ऑफ 48 ही डिसाइडेड टू बिकम एंटरप्रेन्योर। तो वो उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप का रोल लेना, एक बहुत ऊंचे पोजीशन को छोड़ना, वो रिस्क। तो इसलिए उन्होंने मेरे कहा, अभी तुमको इंटरेस्ट अगर हो तो इस फील्ड में हम उतर रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी भी थी उस फील्ड में, क्योंकि एक सनराइज इंडस्ट्री थी एक तरह से। तो 93 में उन्होंने मेंबरशिप ली, 1.5 साल लगा उनको रिलीविंग होने में, और तब तक मेरी सीए 96 में मेरी सीए खत्म हुई, 95 में कॉलेज खत्म हुआ। तो लास्ट एक साल कॉलेज और सीए का, जो लास्ट ईयर सीए में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके मैं डैड के साथ ही जब बिजनेस चालू हुआ एक साल जुड़ा हुआ रहा। पर एक मन में इच्छा थी कि एक फॉरेन एजुकेशन जरूरी है, और एक MBA करना एक मन में वो था कि MBA करके आ जाए। तो काफ़ी कॉलेज में अप्लाई किया, फॉर्चुनेटली मुझे एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल गई, और वहाँ पे मैं यंगेस्ट एंट्रेंट था, क्योंकि नॉर्मली US कॉलेजेस में एवरेज एज 27-28 साल की होती है जब MBA में जाते हैं,
और मैं एक्सपीरियंस के बाद जाते हैं नॉर्मली 2-3 साल का, 5 साल का।
जी जी, तो मैं 21 साल की उम्र में वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया। और वो NYU जो स्कूल है वो पहले ओरिजिनली वॉल स्ट्रीट में ही होती थी, अब वो मैनहट्टन में यू नो मोर सेंट्रल मिड टाउन की तरफ है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट में मुझे बहुत आई थिंक प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हुई, बहुत बढ़िया प्रोफेसर से मुलाकात हुई, सीखने को मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स बने, नेटवर्क बना, ग्लोबल मार्केट्स कैसे चलते हैं उसका एक्सपोजर बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो 96 to 98 में वहाँ US में था और 98 जून में आ गया। वहाँ भी जब था वहाँ एक अपॉर्चुनिटी, न्यूयॉर्क में रहते हो तो आपको काम करने की बहुत इंटरेस्टिंग मिलती है। तो मैं हफ्ते में 3 दिन, एक इन्वेस्टमेंट बैंक था एशिया का पेरेग्रीन, जो उस जमाने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक होता था एशिया का, वो 97 क्राइसिस में बैंकक्रप्ट हो गए। बट वहाँ 3 दिन काम करता था सेलिंग इंडियन इक्विटीज टू FII जो होते थे फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको इंडियन स्टोरी समझाना, स्टॉक्स कराना। और उसके अलावा समर इंटर्नशिप की कंपनी सॉलमन ब्रदर्स जो आज सिटी ग्रुप का पार्ट हो गई है। तो एक्सपोजर बहुत ज़बरदस्त रहा, बट मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं वहाँ रह के 3-4 साल काम कर सकता था, क्योंकि बिजनेस जस्ट चालू हुआ था। तो वो एक ज़रूरी था कि इमिडिएटली वापस आए और बिजनेस में लगे। तो 98 जून में मैं वापस बॉम्बे आया और बिजनेस में लगा, और वहीं से एक करियर सॉर्ट ऑफ शुरू हुआ। अलग अलग यू नो फाइनेंशियल सर्विसेज में अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग बिजनेसेस शुरू किए।
तो पूरा गामुट आपने कर लिया।
हाँ हाँ जी। तो एक्सपोजर आई थिंक यू नो इसमें काफ़ी श्रेय मेरे डैड को जाता है कि जिस हिसाब से उन्होंने ट्रेनिंग और एक्सपोजर दिया है, यू नो अगर वो नहीं होता तो मैं भी टाइम पास ही कर रहा होता कुछ।
बट आई डोंट थिंक सो, लेकिन यू आर सेइंग इट।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया अपनी बाहों में सिमट रही है।
जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
तो हमारे साथ हैं अमित राठी, मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं हूं विकास मित्रसेन। तो ये आपने कुछ तो अर्ली लाइफ का बताया, कुछ याद है आपको कोई खास चीज़ें हुई स्कूल में कॉलेज में?
हाँ, वैसे तो मैं बहुत
स्पेशल लिया कि आप कुछ स्पेशल स्टूडेंट थे?
मैं एक्चुअली मोर देन स्पेशल स्टूडेंट, मैं काफ़ी ऑलराउंड एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखता था।
क्रिकेट
करता था मैं, 3 साल डीजे भी रहा हूँ।
अच्छा?
सो प्राइवेटली साउथ बॉम्बे एटलीस्ट एक जमाने में काफ़ी पॉपुलर डीजे था, और अभी पिछले 1-1.5 साल से वापस मैंने,
ऐसी बातें निकलती हैं जो नॉर्मली पीपल डोंट नो अबाउट यू।
तो पिछले 1-1.5 साल से वापस एक हॉबी पिकअप की है कि भाई वंस अ मंथ प्रोफेशनली डीजे वापस किया जाए।
रियली?
तो म्यूजिक का शौक काफ़ी बचपन से है, तो वो एक हॉबी थी। प्लस स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और बदमाशियाँ भी खूब किए हमने। याद है स्कूल में कि 21 माले की बिल्डिंग से एक दिन इक्विपमेंट आया हुआ था रैपलिंग का, तो रस्सी ऊपर बांध के टैंक से 21 माले की बिल्डिंग से उतर गए 2-3 बच्चे, सब आंटियों को खिड़की पे खटखटाते हुए कि कैसे हो, अब नीचे जा रहे हैं। सब डर गए ऑफकोर्स, पर एक्चुअली सेफ था क्योंकि इक्विपमेंट पूरा था, पर काफ़ी कुछ किया। पढ़ाई में भी अच्छे थे, तो इसलिए कभी घर पर वो दिक्कत नहीं थी। तो क्लास में हमेशा 2nd-3rd रैंक आ जाता था, तो वो तकलीफ नहीं थी। बट चिंता हमेशा मम्मी पापा को ये रहती थी कि थोड़ा और पढ़ ले। तो पर आई थिंक मेरा विश्वास हमेशा ये रहा है कि लाइफ में आप जितने इंटरेस्ट आप रखो, उतना लर्निंग कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल
मिल जाती है,
बेटर मिल जाती है।
मैं तो लाइफ में एक्चुअली फेलियर ही था ऑलमोस्ट शुरू से। तो एट द एज ऑफ 18-20 हमारे फादर ने बोला कि तुम बॉम्बे मत रहो, एज इट इज़ बिगड़ गए हो, और कितने बिगड़ोगे पता नहीं है। तो हमारी टेक्सटाइल मिल थी सांगली में, मुझे वहाँ भेज दिए। तो 8-10 साल वहाँ रहा मैं, वालचंद कॉलेज में स्टडी करा, वहाँ भी एक बार फेल हुआ। ऐसे ही लुढ़कते पुढ़कते काम धंधे में आके बैठ गए, वो चले जा रहा है।
सबका लाइफ में एक अलग अलग ट्रिगर आता है जब वो लाइफ में ट्रेजेक्ट्री चेंज होती है। तो ये बहुत सारे शौक थे जो बहुत लोग बाद में करते हैं। मैंने बचपन में काफ़ी ये सब चीज़ें की, बचपन में क्लब भी चलाता था, तो उस एरिया में करीब 60-70 बच्चे थे। तो आई थिंक उस एरिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फन एंड फेयर डांडिया ऑर्गेनाइज करना। तो हम लोग जब 13-14 साल के थे, तो उस ज़माने में 1-2 लाख रुपया साल का प्रॉफिट कमाते थे
क्लब में,
इन 86-87-88 की बात है ये, और फिर उसको स्पोर्ट्स पे खर्च कर देते थे।
वेरी गुड।
तो वो सब बहुत, मतलब मज़े भी बहुत, पढ़ाई भी की है पर मज़े भी बहुत।
मैंने भी है ना क्लब चलाई थी एक कॉलेज के टाइम पर, हम खार में रहते थे, बड़ा बंगलो था, तो खार के जितने बच्चे थे उस इवनिंग में कॉलेज अपना स्कूल करके वहाँ आ जाते थे। तो वहाँ पे टेबल टेनिस एक अलग रूम था, क्रिकेट अलग था। तो YSC बोल के यंग स्पोर्ट्स क्लब हैड स्टार्टेड, वो भी 2-4 साल चला, फिर अपने आगे निकल गए।
तो नाम अपना थोड़ा कॉमन है, मेरा भी क्लब का नाम था स्टार स्पोर्ट्स क्लब।
हाँ, ये हमारा YSC था।
मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
बताइए कि आप अभी फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है ये बहुत बड़ा हो गया है एक चीज़ आदमी नहीं कर सकता कि एक ही चीज़ में लगे इतने ज़्यादा मतलब है ना थिंग्स आ गए हैं इसमें स्ट्रक्चर आ गया है तो आपका कंसंट्रेशन क्या चीज़ पे
मेरा 90% फोकस वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में है
ओके
क्योंकि एक जैसे आपने सही कहा कि बिजनेस में वेरिएशन इतना हो गया है कि अभी फोकस की ज़्यादा ज़रूरत हो गई है क्योंकि सुपर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत हो गई है तो हम बिजनेसेस अलग अलग हैं पर हमारे जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है फैमिली में अलग अलग जन अलग अलग बिजनेस को ओवरसी करता है और उसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनल सीईओज और टीम्स हैं तो अनफॉर्चुनेटली एक बिजनेस एक स्टेज पे आ गया है कि जहाँ हमारी डे टू डे जरूरत नहीं है तो
हम ऑटो पायलट
पे एक तरह से हो जाता है तो पहले 5-7 साल हम लोग खुद रख के बिजनेस बिल्ड करते हैं और फिर प्रोफेशनल्स ला के हैंड ओवर करते हैं फिर वो चलाते हैं फिर हमारा रोल ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रहता है और देखते हैं कि और क्या नया कर सकते हैं बट फिर भी आई थिंक इंडिया में अभी मुझे लगता है कि वेल्थ मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे हमारी टीम भी अभी काफ़ी अच्छा कर रही है तो उसी में मेरा 80-90% फोकस टाइम का वहीं जा रहा है और इंडिया में एक जेन्युइन नीड है क्योंकि आप देखिए यू नो 80s-90s में वेल्दी फैमिलीज़ गिनी चुनी होती थी बट पिछले 15-20 साल में जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है यू नो पूरे भारत में वो अनपैरल्ड है एंड लोगों की अभी तक सेविंग हैबिट्स फिर भी पुराने ज़माने की है कि लोगों को प्रॉपर्टी, गोल्ड, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में लोगों की अवेयरनेस कम है और फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है. यू नो फिनेंशियल एजुकेशन, कोचिंग फैमिलीज को वो काफ़ी यू नो इंटरेस्टिंग एरिया है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है वहाँ पे. तो उसी में लगे हुए हैं अभी कि उसी को कैसे बढ़ाएं. तो आज हम लोग ऑलमोस्ट करीब 19,000 करोड़ क्लाइंट्स का मैनेज करते हैं. टीम मतलब हर साल 30-35% की रेट पे ग्रो हो रहा है पिछले पाँच छः सालों से. तो मुझे लगता है इंडिया में एक ये भी एक सनराइज इंडस्ट्री है फाइनेंशियल सर्विसेज के विद इन.
यस, तो आपको नहीं लगता है कि ना सिंस इतना ग्रोथ है एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग, शुड यू नॉट ओपन अ कॉलेज और स्कूल और समथिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज? उस डिमांड तो बहुत रहेगी एंड आई डोंट थिंक कितने ज़्यादा कॉलेज हैं ऑन दिस.
कॉलेजेस कम है बट ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इनिशिएटिव लिया हुआ है. तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, काफ़ी लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग एक तरह से इस एरिया में चालू की है. बट ये फील्ड भी इतनी ज़्यादा इवॉल्विंग है कि जो आपने सीखा हो 3-5 साल पहले वो आउटडेटेड होते चले जा रहा है.
ये तो आपको ऑनगोइंग करना पड़ा,
ऑनगोइंग करना पड़ा. तो हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं कि जो इंटरनल हमारी टीम होती है उसमें हम हर महीने उनको 3 दिन ट्रेनिंग में लगाते हैं. तो साल में करीब 35-36 दिन ट्रेनिंग में लग जाते हैं. और सेकेंड इस बिजनेस में वो भी हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होते जा रहा है. आई थिंक आज के जो युवा लोग हैं उनके लिए फ्यूचर में उनको काफ़ी प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आज जितने जॉब्स हैं वो 10 साल बाद वो नहीं रहेंगे. 80-90% जॉब्स टेक्नोलॉजी ले लेगी. तो सबको इवॉल्व करना पड़ेगा कि वो क्या स्पेशलाइज स्किल लेके आ रहे हैं जिससे वो सक्सीड कर सके. वो आंसर मेरे पास भी नहीं है आज. अगर हम ट्रेनिंग भी करें तो क्या चीज़ में ट्रेनिंग करें, क्योंकि वो काफ़ी क्विकली आउटडेटेड हो सकता है.
चीज़ तो आजकल ऑटोमेट हो गई है फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी.
जी,
डिसीजन मेकिंग जो भी देखो मोस्टली द कंप्यूटर इज डूइंग इट फॉर यू. एट द मोस्ट परहैप्स यू हैव टू जस्ट से यस और नो.
वो भी आज ऐसे हो गया है कि विद एल्गोरिथम जो आज ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो आज इंटरनेशनल एज इंडियन मार्केट्स में भी मेरे हिसाब से 20-30% ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हो रही है. इंटरनेशनल मार्केट में 60-70-80% ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हो रही है, जहाँ हर एक डिसीजन कंप्यूटर ले रहा है. और वो भी अभी एक नेक्स्ट लेवल पे आ रही है कि वहाँ भी आज ह्यूमंस कंप्यूटर को कोचिंग कर रहे हैं कि भाई इस रूल्स के बेसिस पे अगर आपको ये दिखे तो आप ट्रेड कर लीजिए. अब नई टेक्नोलॉजीज लाइव हो गई है जो आपको कंप्यूटर को सिखाना भी नहीं, कंप्यूटर खुद पैटर्न देख के खुद अपना रूल बना के खुद ही ट्रेड कर रहे हैं. तो मतलब ये अगर मुझे कोई 10-15 साल पहले कहता या जब मैं MBA कर रहा था तो मुझे बड़ा समझ में नहीं आता. बट वर्ल्ड इस तेज़ी से चेंज हो रहा है. तो वो आज खुद मैं खुद ही ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा हूँ ताकि हम खुद अप टू डेट रहें इस नई फील्ड के साथ.
लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
इंडिया में जॉब्स की बहुत जरूरत है, तो ये कहाँ से आएंगे आपके हिसाब से? आप तो इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये कहाँ से आएंगे? कितने मिलियंस तो स्टूडेंट्स निकल के आते हैं, आधों को भी जॉब नहीं मिलता है, तो हर आदमी तो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है। तो क्या एडवाइस है आपकी कि भी एक अभी है ना अंडरग्रेड निकल के आए, उसे क्या करना चाहिए? जॉब जैसे मोदी जी ने बोला है कि भी ना आप जॉब मत लो, अपना खुद का शुरू करो ताकि आप जॉब प्रोवाइड बन जाओ, तो आपके हिसाब से क्या करे आदमी यंगस्टर जो आ रहा है?
देखिए, एक तो आई थिंक गवर्नमेंट भी काफ़ी स्पेंड कर रही है ऑन द स्किल इंडिया प्रोग्राम और वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकॉज अपने यहाँ चैलेंज इंडिया में हिस्टोरिकली ये रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, डिग्रीज हो जाती है पर वो एजुकेशन में काफ़ी सीखने को नहीं मिलता है। तो दो चीज़ें हो रही है, एक तो कंपनियाँ खुद हायर करके रीट्रेनिंग करती है और गवर्नमेंट भी अभी काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रही है उनको रीट्रेन करने के लिए। इस जॉब सिचुएशन में दो चीज़ें हैं, वन जो पॉजिटिव साइड में है कि आई थिंक जो इंडिया में आज की तारीख में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, जितने नए बिजनेसेस चालू हो रहे हैं, यंगस्टर मिडिल एज जो चालू हो रहे हैं, वो आज मैंने 30 साल में ये एक्टिविटी नहीं देखी है। और ये सिर्फ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड है, सब टाइप के बिजनेसेस में आप देख रहे हो कि नए नए लोग चालू कर रहे हैं। सेकंड, एक उसके साथ एक इकोसिस्टम जो कहते हैं वो भी खड़ा हो गया है कि लोग उनको फंड करने को भी तैयार है। आज अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आपके पास जो कहते हैं ना एंजल इन्वेस्टर, और एंजल इन्वेस्टर आपको ढूंढना नहीं, आपके मामा अंकल फ्रेंड कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपको 20-50 लाख रुपए दे देगा कि भाई चलो चालू करो, उसको प्रूव करो, और फिर आगे अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है तो फंडिंग आपको मिलती रहेगी। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, तो बहुत पॉजिटिव है। और जितनी बिजनेस एक्टिविटी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इंडिया में बढ़ेगी, वो जॉब क्रिएशन अपने आप, तो ये चीज़ प्रिडिक्ट करना कि कहाँ से आएगा मुश्किल है। तो आप देखिए कि बिटवीन ये आपने कंपनियों के नाम सुनोगे, जोमेटो, उबर ईट, स्विगी,
अब और ये सब बिलियन डॉलर कंपनीज बन गई,
बिलियन डॉलर। पर आप ये देखो कि इसमें जो महीने के या डेली में जो नंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया में 40 लाख फूड डिलीवरी हो रही है दिन की आज, चाइना में 4 करोड़ हो रही है, और ये 40 लाख मतलब हर 6 महीने में 12 महीने में डबल हो रही है रफली। ये 40 लाख डिलीवरी करने के लिए जो डिलीवरी बॉयज है उनकी डिमांड जबरदस्त खड़ी हो गई ना, ये जॉब्स पहले थे ही नहीं जो क्रिएट हो गए। तो आई थिंक जॉब क्रिएशन तो बहुत नए नए तरीके से आएंगे जो आज हमें अब कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके के जॉब्स आएंगे। आई थिंक एज अ यंगस्टर या युवा के लिए यही है कि आज अपनी कितनी आप स्किल सेट आप खुद बढ़ा सकते हो। एक बहुत बड़ी चीज़ इंडिया में अलग हो गई है कि इंटरनेट आज यूनिवर्सली अवेलेबल हो गया है, कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी सबको इंटरनेट सस्ते में अवेलेबल है, और आज इतने कोर्सेज वगैरह चीज़ें आप ऑनलाइन सीख सकते हो, वर्ल्ड की बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट प्रोफेसर, बहुत सारी चीज़ें तो फ्री में अवेलेबल है। तो आप जितनी आप अलग अलग एरियाज में आप अपनी स्किल बिल्ड कर सकते हो, पर जितनी चीज़ें आप सीख सकते हो ऑनलाइन, वो मतलब एक्सेसिबिलिटी जो बोलते हैं डेमोक्रेटाइज हो गई है एजुकेशन, वो बहुत ज़रूरी है कि आप कितने अलग अलग स्किल्स हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकते हो, आप प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हो, आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाना वो भी सीख सकते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल ऑनलाइन सीख सकते हो, आप अकाउंटिंग सीख सकते हो, फाइनेंस मार्केट सीख सकते हो, और ये सब चीज़ें आप ढूंढो तो सब फ्री में सीख सकते हो। तो आप कितना टाइम आप लगा रहे हो इसमें सीखने के लिए, फिर कहाँ जॉब्स आएंगे वो पता नहीं, बट द वर्ल्ड विल नीड पीपल जिनके ज़्यादा मल्टी फैसेटेड टैलेंट मतलब वो स्किल हो, रादर कि एक ही स्किल हो।
तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जॉब्स आ जाएंगे,
जॉब्स आ जाएंगे, ह्यूमन मतलब वो क्रिएटिविटी है, जॉब्स आ जाएंगे। आज लगता है बेशक कि, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक यही चीज़ जॉब्स के बारे में लिखा था कि मशीन सब जॉब्स ले रही हैं और 10-20 साल बाद क्या होगा, और ये लिखा गया था आर्टिकल, बाद में उसने ऑथर ने बताया कि ये आर्टिकल लिखा गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम कि जॉब्स खत्म हो जाएंगे, खत्म, तो जॉब्स पर वो लगता है कि आर्टिकल आज लिखा गया, पर उस टाइम वो लोग भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि क्या क्या नए सर्विस इंडस्ट्री के जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आज भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि जॉब्स कहाँ, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि जॉब्स जरूर क्रिएट होंगे, बट जो जॉब इन्वायरमेंट में लोगों को कंटिन्यूसली अपस्किलिंग कर रही, कंटिन्यूस लर्निंग करके अप ट्रेनिंग करके अपने आप को करंट रखना बहुत, वो एक चेंज है,
तो उसमें स्किलिंग विल हेल्प। Thank you.
कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
फाइल में कुछ YPO लिखा हुआ है क्या है ये
YPO एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया भी चैप्टर है इसका फुल नाम है यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन
ओके
तो यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक USA चालू हुई संस्था है जिन्होंने कहा कि जो यंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो CEOs होते हैं या एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास एक फोरम होना चाहिए कि जहां वह मिल के आइडिया शेयर कर सके और एक दूसरे से सीख सके
अच्छा
तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चालू किया तो YPO का इंडिया में भी चैप्टर खुला है बॉम्बे में एक सबसे पुराना चैप्टर है जिसमें मैं अभी मेंबर हूँ तो जैसे बॉम्बे चैप्टर में करीब 200 मेंबर होंगे इन 200 मेंबर्स जो है अलग अलग फील्ड के एंटरप्रेन्योर्स भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट लेवल के लोग हैं जो हर महीने इसमें दो तरह के फॉर्मेट होते हैं कि एक होता है एक कॉन्सेप्ट होता है एक फोरम का कि आपके साथ 8 से 12 जन जुड़े हुए होते हैं जो आपके ऑलमोस्ट समझो लाइफ लॉन्ग एडवाइजर हैं जहां हम हर महीने मिलते हैं हमारी पर्सनल इश्यूज बिजनेस इश्यूज सब डिस्कस करते हैं और हमें सेम उम्र वालों से शेयर्ड एक्सपीरियंस और एडवाइस मिलती है कि अगर वो होते तो वो इस पोजिशन में क्या उन्होंने क्या करते क्या किया तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं या पेरेंट्स एल्डर्स के जाते हैं, दोस्तों से वो दोस्तों की मे बी वो सेम स्टेचर या एक्सपीरियंस ना हो और पेरेंट्स एक अलग और एल्डर्स एक अलग जनरेशन हो जाती है, तो ये सेम एनवायरनमेंट में आपके ग्रो जिनकी सेम बिजनेसेस हैं, इश्यूज हैं, चैलेंज है, पर्सनल जिनके बच्चे सिमिलर एज के हैं, वो एक एनवायरनमेंट आपको शेयर करके और लर्निंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सेकेंड ऑफ कोर्स एक ये नेटवर्क ये भी ये YPO एक ये भी करता है कि आपको एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है, तो आप दुनिया में कहीं भी जाएँ आप मोस्टली कोई ना कोई YPO मेंबर आपको इंटरनेशनल भी आप अप्रोच कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में आपको आपकी इंडस्ट्री में किसी आपको किसी से काम हो आपको एक बार तो कोई ना कोई मीटिंग जरूर दे ही देगा, तो बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है।
अवार्ड्स भी मिले आपको?
जी आई थिंक यू नो पर्सनल अवार्ड से ज्यादा जो मैं प्राउड हूँ ये जो मैंने जो हमारी टीम्स को अवार्ड मिले हैं बिजनेसेस में जो हमने किया है, क्योंकि आई थिंक इंडिविजुअल कैपेबिलिटी एक तरफ होती है पर जब सारी टीम को एक रिकॉग्निशन मिलती है जैसे मैं आपसे शेयर करूँ
टाइप के अवार्ड्स
मैं जैसे आपको जैसे मेरे वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में दो तीन तरह के अवार्ड होते हैं, एक तो होता है इंडस्ट्री रिकॉग्निशन जो या तो क्लाइंट्स करते हैं या इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स करती है, तो जैसे हमें एशिया मनी में CFI लंदन में पिछले 10 सालों से हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे वी हैव बीन रेटेड एज द बेस्ट वेल्थ मैनेजर इन इंडिया, तो कंटिन्यूसली अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं। उसके अलावा एक दूसरा अवार्ड है विच एक्चुअली मेक्स मी मोर प्राउड, जो हमें 2017-18 में हमें टॉप 50 ग्रेट प्लेसेस टू वर्क इन इंडिया का अवार्ड मिला। मतलब है ये ग्रेट प्लेसेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है जो एम्प्लॉई पोल करता है और कंपेयर करता है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड के साथ। विल एम्प्लॉईज लाइक टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो कितना खुश है, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, वो रेटिंग में अगर आप टॉप 50 इंडिया में अगर आ जाएं, आज सबसे बड़ा सक्सेस का इंग्रेडिएंट है आपके पास टैलेंट आपके साथ कितना जुड़ा हुआ है, उसमें अगर आप टॉप में आ गए अगर आप वो मेंटेन कर सकते हैं तो आपके बिजनेस में सक्सेस, क्योंकि बिजनेस तो चेंज होता रहेगा पर जो ह्यूमन टैलेंट है वो आपको हर हर्डल से क्रॉस करा के आपको सक्सेसफुल करता रहेगा। तो ये एक अवार्ड्स है जिनके बारे में टीम अवार्ड्स होते हैं विच आर एक्चुअली मोर सेटिस्फाइंग। पर्सनल रिकग्निशन तो चलती रहती है और अब एक एज हो गई कि वो पर्सनल रिकग्निशन की एज खत्म हो जाती है, अलग अलग
वो अंडर 40 का कुछ रहता है 40 अंडर 40
हाँ
अभी तो आप 45 हो गए,
अब तो 45 हो गए, तो उसके 50 अंडर 50 अभी आजकल वही कहना पड़ेगा क्योंकि 50 इज द न्यू 40 वो करना पड़ेगा, फिर 60 इज द न्यू 40 हो जाएगा धीरे धीरे, बट मतलब प्रोफेशनली एक बहुत मतलब इट इज बीन अ सेटिस्फाइंग जर्नी। चैलेंजेस भी रही है काफ़ी, कोई स्मूथ राइड नहीं रही है, चैलेंजेस बहुत रही है और उन चैलेंजेस को जब आप सक्सेसफुली ओवरकम करते हो वो जो हैप्पीनेस मिलती है सेटिस्फैक्शन मिलता है वो प्योर सिंपली सक्सीडिंग से नहीं मिलता है, वो चीज़ों का और वो आपके साथ टीम जो जुड़ी हुई है वो आपके साथ रही है इतने सालों से और वो सक्सेसफुल सब और उनको सक्सेसफुल होते हुए देखते हुए वो एक सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है।
सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब, तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब, मेरी तरह तू आह भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने वो सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी नायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब।
ये बताइए कि अभी इंडिया का जो है इकोनॉमी काफ़ी सुधर गई है, तो फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? मतलब है ना, अपने क्या अनदर 10 ईयर्स के बाद इंडिया कहाँ रहेगी? ऑलरेडी अपने शायद 5th हो गए हैं वर्ल्ड में, 5th या 6th ऑलरेडी हो चुके हैं, तो क्या अभी ये जो लास्ट बैरियर्स हैं इंडिया तोड़ पाएगी?
आई थिंक ये इनएविटेबल है। क्वेश्चन ये है कि कब?
दूसरी कंट्रीज भी तो ग्रो हो रही हैं,
पर इंडिया में अपनी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जितने यंगस्टर्स हैं, तो ग्रोथ तो इंडिया में वर्किंग एज की, वी विल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे पास इंडिया में है, और वो बढ़ती 2030 तक तो एटलीस्ट आई थिंक वो नंबर अगर मुझे करेक्ट याद हो तो वो अपना हाईएस्ट रहने वाला है। और वर्ल्ड में भी इतने चेंजेस अभी ड्रामेटिकली हो रहे हैं, और सारे चेंजेस अब देखो 50-60% चेंजेस टेक्नोलॉजी द्वारा ड्रिवन है, और वो एक एरिया है जो इंडिया की स्ट्रेंथ है। आज गवर्नमेंट ने भी कहा है, मोदी जी ने भी कहा है कि भाई इंडिया $5 trillion इकोनॉमी का उनका एक टारगेट है। यू नो, अप एंड डाउन आते रहेंगे इकोनॉमी, बट आई थिंक इंडिया का फ्यूचर जो है ज़बरदस्त है। एंड डिस्पाइट जो भी कुछ हो रहा हो, आज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस इंडिया में है, लास्ट ईयर भी आप देखें कि FDI हाईएस्ट लेवल पे एक FDI आया है इंडिया में, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है, तो इंडिया का फ्यूचर आप देखें कि अपने पास टैलेंट है, यंग टैलेंट है, टेक्नोलॉजी स्किल सेट्स है, कैपिटल की एक शॉर्टेज इंडिया में जरूर थी, बट फॉरेन कैपिटल आज इतना भरपूर सरप्लस अवेलेबल है, और इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली आज 25% वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव है, कि आप बैंक को पैसा देते हो बैंक पैसा रखने के लिए, तो पैसा तो इंडिया में पैसे की कमी है, पैसा भी आ रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन के कारण आई थिंक इंडिया विल मेरे हिसाब से 10 सालों में वी शुड बी इन द टॉप 3 or 4 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड।
ये तो हुई मेरी बातें, आते हुए आप बता रहे थे कुछ कि आपको भी कुछ कहना है अबाउट एनीथिंग, द फ्लोर इज योर्स।
जनरली आई थिंक इकोनॉमी के बारे में जब बात कर रहे थे, एंड आई थिंक यू नो मीडिया के कारण लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, फ्यूचर क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगा, बट ये अंडरस्टैंड करें कि इंडिया में बहुत बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 4-5 सालों में। आप बैंकक्रप्टसी कोड देखें, GST देखें, और डीमोनेटाइजेशन भी एक, मतलब जो आज डिजिटल एज में इंडिया को लाने के ये बड़े बड़े अपहीवल हैं, तो इनको एडजस्ट करते हुए इकोनॉमी में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है, बट इसके कारण फ्यूचर जो है इंडिया का बहुत ज़बरदस्त है। एंड ये है कि पीपल हैव, कंपनीज, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल हैव टू बी एबल टू राइड आउट दिस स्टॉर्म, कि भाई आप इसको बस राइड आउट करें, अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग, इंडिया में लॉ तो था पर रूल ऑफ लॉ नहीं था, अब वो रूल ऑफ लॉ भी बनते जा रहा है, तो उससे एक आम नागरिक का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा ही, और बिजनेसेस का भी कॉन्फिडेंस इवेंचुअली आएगा। आज एक सिचुएशन है कि ग्लोबल इकोनॉमी भी वीक है और इसलिए सेंटिमेंट्स थोड़े वीक हैं, हम काफ़ी पॉजिटिव है कि अगर किसी का 5-10 साल का होराइजन हो इंडिया में, भले वो इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस का हो या करियर का हो, ये मतलब इंडिया से बेहतर आज के तारीख में कोई प्लेस है नहीं। चैलेंजेस इंडिया में रहेगी पर वो चैलेंजेस ओवरकम करना मुश्किल नहीं है।
तो ग्रोथ पैंग्स तो होती है ना?
होते ही है जी,
तो वही चल रहा है मेरे ख्याल से इंडिया में, ग्रोथ तो आ ही रही है,
ग्रोथ आ ही रही है।
हमारे साथ हैं अमित राठी जी, यह है मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज। अमित जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।
थैंक यू फॉर,
हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ बातें समझ में आई हैं आज।
ग्रेटफुल आपने मुझे शो के लायक समझा और बुलाया मुझे, शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।
आज कार्यक्रम छूलो आसमान में आपसे बातचीत कर रहे थे अमित राठी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज, और इनसे बातचीत कर रहे थे विकास मेटिसन, जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नजारा टेक्नोलॉजीज, प्रेसिडेंट आईबीजी एंड द ऑनररी काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली। चलते चलते हम आपको ये बताएं, आज के रिकॉर्डिंग में निर्मिती सहायक थी कंचन गुनेले, और एफएम गोल्ड की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। और दोस्तों, मिलते हैं अगले शुक्रवार को इसी दिन इसी समय।
मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।
ओ, तू बदन है, मैं हूं छाया, तू ना हो तो मैं कहां हूं, मुझे प्यार किसी राह भी निकलते, हो हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते, ये कहां आ गए। ही साथ साथ चलते।
मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
ये कहा आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, ये कहा